ரமோ அரிஹந்தாணம் ரமோ சித்தாணம் ரமோ ஆயரியாணம் ரமோ வஜ்ஜாயாணம் ரமோ லோயே ஸவ்யசாஹுணம் மங்களம் பகவான் அவீரோ மங்களம் கௌதமோகணி மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜெயனி தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானா ஜெயனம் ஜயது சாசனம் ஜெயனம் ஜயது சாசனம் நமஹ ஸமய ஸாராய ஸ்வானுபூத்யா சகாஸுதி சிஸ்வபாவாய பாவாய ஸர்வே பாவாந்தரஸ் வந்தித்து ஸர்வ ஸித்தி த்ருவமசல்மடோபவம் கதிம் பத்தி மோச்சாமி ஸமய பாஹுல் ஸ்ரீ சமய சார்ஜி கிரந்தாதிராஜ் இஸ்மே அபி குருதேவ் ஸ்ரீ சே 31 நம்பர் கி காதா பர் அப்பன் இஸ் கிரந்த கே ரச்சேதா ஹே ஆச்சாரி குந்த குந்தியோ और टीकाकार है इसके अमृत चंद्राचार्य देव और इसका भावार्थ निष्कर्ष जयचंद जी छावड़ा साहब ने लिखा और इस काल में इसके रहस्य उद्घाटक पूज्य गुरुदेव सिंह। अभी अपन ने सुना कि कितना मार्मिक स्वरूप है। सुन लेने के बाद फिर अपन को अलग से बैठने की क्या जरूरत। गुरुदेव का चिंतन कोई कमजोर तो नहीं, सफिशियंट। अब अपने अपने घर जाना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। तो गुरुदेव श्री क्या फरमाते थे, यानी इतनी गंभीर गर्जना होती थी कि सोनगढ़ में जगह जगह टोलियां बैठती थी, लोग इकट्ठे होते थे, बैठते थे और फिर इस बात पर चर्चा करते थे, आज क्या है, क्या कहना चाहते हैं। इस शब्द तो ऐसा था और भाव ऐसे निकाले गुरुदेव, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा लगता था अच्छे रसिक जीव जाते थे, बहुत उत्कृष्ट। यानी काल बीत गया अपने गुरुदेव श्री का, तो वो बात अपन सब पहले तो उनसे सुनते हैं, फिर अपन को विचारना चाहिए कि कहाँ भजन देना। क्योंकि पंडित जी साहब ने लिखा तोड़मल जी ने कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है। क्या है? शिक्षा मात्र। फल तो जैसा जीवन जिएगा वैसा आएगा, अन्यथा पुरुषार्थ से अन्यथा फल की प्राप्ति चाहे तो किस हो। दूध मीठा करना हो और सोने की गिलास में भी रखे और चांदी की चम्मच भी हिलाए तो दूध मीठा नहीं होगा। ऐसे मात्र सुन ले, सुना दे, तो इससे तो आत्मानुभव नहीं होगा। तो कुछ प्रैक्टिकल कराए ना उन्हें आज कि कैसे जीतना इन इंद्रियों, है ना। तो अभी अपन उनकी जो अभी चर्चा हुई उसी चर्चा में मुख्य मुख्य बिंदु लेंगे। पहले तो सभी लोग ग्रंथ रख के गाथा का पाठ करें। जो इंद्रिय जड़ बोलो, जो इंद्रिय जिणता लाल सहाबाधियम मुड़दियादम तम खलुजिदिंदियम ते ते भड़ंती जेरिछदासाहु भड़ंती जेरिछदासाहु कर इंद्रिज ज्ञान स्वभावेरु अधिक जाने आत्मे को निश्चय विशेषित साधु जन भासे जितेंद्रिय उन्हीं को। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्न द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है उसे जो निश्चय में स्थित साधु परमेष्टि हैं वे वास्तव में उसे जितेंद्री कहते हैं। देखो अपन रोज जय जिनेन्द्र कहते सब मिलते हैं ना सादर है। तो जय जिनेन्द्र कहते तो जय जिनेन्द्र क्यों कहते कि जय हो जितेंद्रियों की जिन्होंने इंद्रियों को जीता उनकी जय हो। तो ऐसा अपन एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो याद करते हैं कि मार्ग तो ये है वितरागियों का जितेंद्रियों का, इसलिए भगवान का स्मरण करते हैं। अब कहते हैं कि ये स्तुति की चर्चा कहां से आई विवेक, ये ग्रंथ तो प्रतिज्ञाबद्ध है कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, तो वही बताते रहते। अभी बीच में स्तुति और फिर इंद्रियों को जीतना ये कहां से आ गए। तो क्या हुआ इस ग्रंथ को जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने तो यही कहा सब में सिद्धत्व की स्थापना करो, सब जीवों को सिद्ध देखो, किसी जीव को पर्याय से मत देखो, स्वभाव से देखो, यदि शक्ति से देखो तो द्रव्य से सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, अनादि सिद्ध, और पर्याय में देखो तो भविष्य में सिद्ध होने वाला, किसी को छोटा नहीं देखो, तो आपके कभी राग द्वेष नहीं होंगे, ये आदत डालो। गरीब हो अमीर हो ऐसा नहीं देखो, वो जीव है और जीवो ही मंगलम, जीव का स्वभाव ही मंगल, ज्ञान स्वभाव ही है, परमेश्वर स्वरूप है। तो ऐसा पहली गाथा में बहुत बड़ा काम शपथ ग्रहण समारोह का कराया कि आप प्रतिज्ञा लोक में जीवन भर सब जीवों को स्वभाव से देखूंगा, फिर आप राग द्वेष करके बताना सबके सोने एक से हैं, तो कौन सा ज्यादा महंगा कौन सा कम, सब अहमेंद्र है कोई छोटा बड़ा नहीं, ऐसे सब जीव स्वभाव से ज्ञान स्वभाव ही है, स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है, ये सब देखने की आदत डल गई तो फिर अपन को ये जो पहन रखा है भव मूर्ति जिसमें ये पांच प्रकार के गड्ढे बने हैं और इससे अपनी बेइज्जती अपन कराते रहते हैं 24 घंटे क्या होता है। अभी गुरुदेव ने कितना खोला कि आंख से दिखता है, आंख ना हो तो कैसे दिखाई, कान से सुनाई पड़ता है, कान ना हो तो कैसे सुनेंगे सांस, सुगंध दुर्गंध काई से आती भाई नाक से आती, अपन किसी वस्तु को छूते हैं तो कैसे पता चलता है हल्का भारी कड़ा नरम ठंडा गरम रूखा चकना, कैसे पता चलता है बाबूजी स्पर्श इंद्रिय से चलता। ऐसा 24 घंटे आत्मा का अपमान कराने का ठेका मिथ्यात का, सुबह से शाम तक कौन सी कथा चलती, आराम कहाँ दिखता। तो ये गाथाएं अपनी नींद खोलती, अपन को सोचने के लिए विवश करती, आपकी हकीकत बताती वास्तविकता क्या है। यानी आंख से दिखता है तो आत्मा यदि देखने वाला ना हो तो आंख से देख के बताओ, और जो सपना देखते हो तो अंधेरे में देखते हो कि लाइट जला के देखते हो कि आंख खोल के देखते हो कि बंद आंख से देखते हो, वही साहब सपना देखते हैं ना तो आंख खोल के देखते हैं कि बंद आंख से देखते, बंदे आंख से भी नहीं दिखता, उजाले में देखते कि अंधेरे में, उजाला तो है नहीं सो रहे तो काय में दिखता, उजाले में कि अंधेरे में, अंधेरे में भी नहीं दिखता। तो काहे नहीं दिखता, यही तो वो कह रहे कि ज्ञान से दिखता। अपना दिमाग वहां नहीं जाता जहां ये ले जाना चाहे। सीता को देखा रावण ने और पागल हो गया, है ना, परेशान हो गया, उसको उठा ले गया और पूरी लंका कांड मच गया लाखों जीव के। तो उसने काई से देखा था सीता को, आंख से देखा था कि आंख से देखा मानता था, देखता तो ज्ञान ही से था, और यदि वो ज्ञान से देखता मानता तो सीता तो सिद्ध देखती, फिर विकार कैसे आता उस? महापाप है इन इंद्रियों से ज्ञान मानना, आत्मा की विराधना करने का पाप लगता, क्योंकि जीव जानता है काय से ज्ञान से और मानता काय से है जड़ से। ये आंख तो स्टेच्यू की भी बनी होती, वो तो नहीं देखती, मुर्दे की भी रहती वो तो नहीं देखती, प्लास्टिक की बनी है खिलौने में वो तो नहीं देखती, तो देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, कोई है ना। देखो अपन ऐसा कह के निपटते हैं कि वो जीव है, ऐसा कह के गुरुदेव ऐसी पद्धति नहीं सुनना चाहते कि तुमने जीव कहा और भूल जाओ उसे। वो कह रहे हैं कि जीव है तो जीव को खोजो देखो, ऐसे सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, कोई बहुमूल्य वस्तु है, कीमती तत्व है, जिससे जिसके बल से आत्मा है टिका हुआ। ऐसे चैतन्य प्राण का धारी ज्ञान और आनंद स्वभावी भगवान चैतन्य देव कारण परमात्मा, इसे देखने का मन नहीं हुआ तो समझ लेना शास्त्र सुने। अब इसमें विधि बताई, देखो ये अभी गाथा पढ़, तो पहली गाथा में सिद्धत्व की स्थापना की, दूसरी में समय की परिभाषा बताई अमृतचंद देव ने, कुंदगुण देव ने तो ऐसे ही कहा सो समय हो पर समय। एक व्यक्ति वे हैं जो आत्मा को आत्मी नहीं मानते, एक व्यक्ति वे हैं जो आत्मा को आत्मा मानते, तो दो गए सो समय हो पर समय। तो आत्मा सो समय है विवेक के पर समय। तो दूसरी गाथा में अमृतचंद देव कहते आत्मा सो समय पर समय नहीं होता है, आत्मा को मानने वाली पर्याय सौ समय और आत्मा से नाराज पर्याय पर समय, परिणति में सौ समय पर समय। ये तो गुरुदेव के आने से सब रहस्य खुले, अपने को तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी पढ़ा जाता है। फिर तीसरी गाथा बहुत सुंदर लिखा कि एकत्व को प्राप्त है सब वस्तु, बहुत सुंदर। अपन को जगत बहुत बेकार लगता है, कालाबाजारी लूटपाट हिंसा जैसा, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान को तो नहीं खराब दिखता, छेद्र दिखते, यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, सब द्रव्य अपने गुण पर्याय में मग्न दिखते हैं, सभी द्रव्य अपने चतुष्टय से बाहर ही नहीं दिखते। तुम थोड़ी केवल ज्ञान की आंख से तो देखो, आगम की आंख से देखोगे तो आपको विश्व सुंदर दिखने लगे। अभी काय की आंख से देखते, चमड़े की आंख से, तो ये चमड़ा क्या दिखाएगा, चमड़ी दिखाएगा। ऐसा बहुत सुंदर ग्रंथ है। अपन तो यहाँ आए कि इसमें बात कहाँ से छेड़ दी, निश्चय स्थिति की ओर व्यवहार। तो ये 24-25 गाथा तक की बात चलती आई कि जीव राजा जानो हे मोक्षार्थी, जीव राजा जानो, ये देखो अनुभूति में आ ही रहा, तुम जान रहे हो ना, तुम्ही तो जियो, ऐसा सुंदर कथानक चलता है। अब वो कहने लगा तो साहब हम भी सम्यक दृष्टि, क्योंकि हम तो जानते हैं, अब हमें आत्मा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो ज्ञान इसे बने ना, हमें ज्ञान करने की क्या जरूरत। ऐसा 17-18 गाथा की टीका के बाद अमृतचंद देव ने खुद ही प्रश्न बनाया, अरे भाई तू ज्ञान से आत्मा तेरा तादात्म होने पर भी तू एक क्षण भी एक को नहीं जानता है, क्योंकि ये जानना तो तब हो जब कोई आत्मज्ञानी गुरु की संगति करे, या पुराने संस्कार लेके आए हो जैसे गुरुदेव लाए थे, कोई गहरा जिज्ञासु तो उसकी नजर पलटे। अब इसकी नजर कहाँ है, इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर, तो बाहर तो पुद्गल ही पुद्गल दिखाई, इसमें तो आत्मा दिखती। तो उन्होंने जगाया, फिर 19 गाथा से चालू ही ऐसा बताते रहे कि सर्वज्ञ देव ने आत्मा का लक्षण उपयोग कहा, सब वर्णुनाण दिठो जीवो उपयोग लक्षणो निच्छन, जीव का लक्षण उपयोग है। आत्मा सर्वज्ञ देव ने देखा, अपना आत्मा, सबका आत्मा, कौन से लक्षण से, उपयोग लक्षण से, उपयोग लक्षण नहीं लिखा, नित्य उपयोग लक्षण, यानी 24 घंटा आत्मा ज्ञाता रहता है, जाननहार रहता है, जानता देखता है और कोई काम नहीं देता, ऐसा कहा। अब शिष्य ने खड़ा होकर कहा, इस तरह से आप यदि चर्चा करोगे तो ये मंदिरों का क्या होगा, पूजा का क्या होगा, स्तुति का क्या होगा, फिर कोई मंदिर में आएगा नहीं, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, फिर पूजा कौन करेगा। और फिर अभी जो पंचमेर की अपन इतनी गा बजा के पूजन कर रहे थे कि पांच मेर होते हैं, उनमें 80 जिनालय होते हैं, अष्टम दीप नंदीश्वर होता है, उसमें कितने जिनालय होते हैं, 52 जिनालय होते हैं, एक जिनालय में कितने भगवान होते, 108 भगवान होते, कितने बड़े होते, 500 धनुष के होते, कौन जाता है वहां पर, देव जाते हैं। और पंचमेरी में कौन जाता है, मनुष्य जाते हैं। मनुष्य क्यों जाते हैं, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत की उस तरफ देवों का ही गमन है, मनुष्यों का गमन नहीं है। तो अपन अपनी भावना यहाँ पूरी करते पंचमेर में, और देव अपनी भावना वहां पूरी करते, क्योंकि उनकी हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, अपने में ऐसी शक्ति नहीं है देव जैसी कि वहां जा सके, तो उनको जाने दो, अपन यहाँ कर लेंगे भाव, यहाँ जगा लेंगे। परंतु आप तो कहते ये कोई स्तुति नहीं, फिर ऐसी में स्तुति कैसे करेंगे, बिना देह के गुणों को गाए स्तुति होगी कैसे। अब ये जो भगवान है भाई साहब आप बता ना, अभी जो सीमंदर भगवान है बड़े, ये काय के बने हैं, ये प्रतिमा जो ऊपर है ये रतन की प्रतिमा है कि पीतल की है कि पाषाण की है कि काय की प्रतिमा, पाषाण की, वो कह रहे रत्नत्रय की, अपन को रत्न उसमें कहा दिखते, अपन को क्या दिखते, पत्थर दिखता है, क्योंकि अपन काय से देखा, इससे देखा, तो वो ही दिखेगा ना जो देखना चाहते हो, वो नहीं दिखेगा जो ये दिखाना चाहते। तो अपन ने भगवान को देखा पाषाण के बने, अरे भगवान सम्यक दर्शन ज्ञान चारे तन चतुष्टय नौ लब्धियों के भंडार है कि नहीं, तो वो आंख से नहीं देख सकते आप, उसके लिए तो ज्ञान चाहिए। तो शिष्य ने कहा कि फिर पंचमेर विधान नंदीश्वर विधान भगवान के गुण, भगवान अनंत देव विराजमान है समोसरण में, कौन सा शरीर है वैसा उनका, परमोदारिक शरीर है, कितने इनके कितने चमर ढुलते हैं उनके, 64 चमर ढलते हैं, वे धरती में चलते हैं कि आकाश में चलते, आकाश में चलते हैं, उनका रूप सुंदर होता है कि असुंदर होता है, उनका सुंदर रूप होता है, तो ये सब लोप हो जाएगा, मतलब ये जो अपन ने गीत गाए ये सब झूठे है, मतलब ऐसा 26 नंबर की गाथा में कुंद कुंदेव ने स्वयं गाथा बनाई, जद जीवूण शरीरम तिथय राय रिये संतुदी चेव सब बावी हवदी मिच्छा, सब झूठी पड़ जाएगी, तेरदु आधा अवधि देहो, इसलिए देही को आत्मा बनाओ मानो, ऐसे में तो सब मंदिर बंद हो जाएंगे और जिनवाणी कौन पड़ेगा। आप तो ऐसा कहते हो कि ये भगवान नहीं, तो भगवान कौन, तो कितना अच्छा उत्तर दिया इसमें, जब 26 गाथा के, तू नए विभाग को नहीं जानता, क्या गजब की बात है कि हमारे भगवंतों ने निश्चय से आत्मा कैसा है और व्यवहार में कैसा है सारा ज्ञान कराया। तो जब हमारे भगवान अपन को आत्मा नहीं दिखती है तो बाह में सोम मुद्रा बताते, देख अपने भगवान कितने अच्छे होते, कैसी अंतर्मुखी होती, किसी सोम मुद्रा होती है, हाथ पे हाथ रखे, पैर पे पैर रखे, कहीं गमन नहीं करते, कहीं हाथ नहीं उठाते, जगत के पास तो दो हाथ है तो हजारों हाथ बनाता, हमारे पास भगवान के पास तो दो हाथ है वो भी बंद करके रखता, सबके पास जगत में उपयोग है और वो बांटता रहता, हमारे भगवान तो उपयोग को उपयोग में लगाते देख मगन रहते, निजानंद रसलीन रहते। तो आप क्या बताना चाहते कि भैया तू नए विभाग नहीं जान, जब हमने कहा था कि भगवान की सोम मुद्रा होती है, आकाश में गमन होता है, 64 चवर ढुलते हैं, 100-100 इंद्र भगवान की वंदना करते हैं, परमोदारिक शरीर होता है, सुडोल स्वरूप मुद्रा होती है, एक मुख और चार दिखाई देते हैं, 12 सभाएं होती हैं, समोसरण होता है, ये सब बातें जनागम में लिखी हैं कि नहीं भाई, लिखी है। तो फिर आप कहते हो कि आत्मा के शरीर नहीं, आत्मा देह से रहते, इंद्रियों से रहते, तो फिर इसे स्तुति का क्या हो, तो क्या उत्तर दिया अनु भैया ये तुझे नए विवाद नहीं आ। जब हमने कहा था भगवान की सोम में अंतर्मुखी मुद्रा होती है, उस समय भी हम भगवान आत्मा को बता रहे थे कि इनकी बाह में ऐसी मुद्रा जिनकी अपन भक्ति गाने आए ना, वो जो विराजमान उनकी शांति बाहर में रोम रोम से टपकती। देखो इंद्रभूति जो गौतम गणधर बने, उनने तो बाहरी मुद्रा देखी, और बाहरी मुद्रा देख करके ही, और ये ऐसे भगवान, जिसे भगवान को देखते ऐसा लगे ऐसे भगवान, समझ लेना उसका गृहित मिथ्या भाग है, और जिसे ऐसा लगे कि भगवान यहाँ देखते हैं उसका अगृहित मिथ्या भाग जाएगा। कितनी सुंदर सोम मुद्रा होती, परंतु कुंदकुन देव कहते भैया ये तो बाहरी पैकिंग है, तो भीतर कैसा होगा? जिसकी मुद्रा इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा जिसके तुम बाहर में इतने रीझ गए। फिर व्यवहार स्थिति बाहरी चर्चा करती है, और निश्चय स्थिति अंतरंग में चर्चा करती है। आत्मा का स्वरूप बताइए। अब ये ग्रंथ की प्रतिज्ञा है कि हम तो तुम्हें आत्मा दिखाने के लिए भाई, क्योंकि तुम इसी को नहीं जानते। इसी को नहीं जानने मानने का नाम मिथ्या है, अज्ञान है, संसार, और इसी को जानने से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो इसे कैसे जानेंगे आप? देखो इसको बताने के लिए जो इंद्रियों को जीत कर 31 नंबर की गाथा, जो यानी देखना जो शब्द का अर्थ क्या होता। महावीर बाबू कि इतने अरबों जीव हैं अभी, इस समय हमने सुना है कि 7 अरब आदमी हैं अभी जो अपनी जानकारी में आते, 7 अरब जीव। बताओ इस समय सार को कौन भाग्यशाली पड़ रहा, जिसके हाथ में ये समय सार आ गया, ये शुद्धात्मा की बात रुच रही है, ये भावी भगवान है जो यहाँ मंडल में बैठा, इतना बड़ा लाभ लेने वाला है। कौन सुनने वाला नहीं, जो प्रीत चित्त से चैतन्य की चर्चा सुनता है, अहो भाव आते हैं, क्या बात है, मेरी चर्चा, मैं ऐसा हूं, ऐसे स्वभाव की तरफ जिसका पक्ष जाने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरी कथा है, उसके बहुत ज्यादा नहीं रहते। क्योंकि ये जीव महाव्रत ले लेना ये सरल, घर छोड़ देना सरल, ब्रह्मचर्य ले लेना सरल, पर आत्मा की जिज्ञासा जगाना बहुत पुरुषार्थ, इसके भाव नहीं होते। अपने घर छोड़ के चले जाते, अपन सोनगढ़ में भी रह सकते, देवलाली रह सकते, शिखर जी में रह सकते, सब जगह संकुल बने, पर रुचि कहाँ से लाओ? उस क्षेत्र से आप घर छोड़ के वहां निकल के चले गए, ये तुम्हारा पुण्य है, तो यहाँ नहीं रहते, वहां रहते हो, परंतु ये अपने में रहने की रुचि कैसे जगाओगे? इसलिए जो शब्द डाला कि जो इतने अरबों अरबों जीवों में जो चटके ऐसा देखे, धन्य है वो जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते उन्हें तक धन्यवाद दिया पंडित साहब। तो जो किसे जीतना है भाई साहब, इंद्रियों को जीतना है। अभी स्वामी जी कह रहे थे ये जीतो ये जीतो ये जीतो, पता है नहीं कुछ क्या जीतो कैसे जीतो, तो बेचारा यही करता है, नमक शक्कर रस छोड़ देता है और अपने आप को जितेंद्र ही मानता है। तो अभी ने विधि बताई इस गाथा कि जो इंद्रियों को जीत कर, जीतना किसे है, इंद्रियों को कैसे जीतोगे आप, ज्ञान स्वभाव के द्वारा जीतोगे। तो देव साधन ही सौंप, ऐसा ऐसा नहीं बताया कि भाई साहब ये दुकान चलाना और माल वाल कुछ नहीं, दुकान भी है, जगह भी है, माल भी है, सब कुछ है, तुझे अपना उत्साह बताना। ऐसे आचार्य जो कहते हैं कि तुझे आत्मा जानना भाई साहब, हम तो इंद्रियों की जय बता करके तेरा उपयोग बदलना चाहते कि तू है कौन। हम इंद्रियों को जीतने का अर्थ इंद्रियां नहीं बताना हमें, ये कोई इंद्रियों का पाठ यानी डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं है कोई क्या वहां पर शरीर की रचना बताने लगे। यहाँ तो गुणस्थान के भी ज्यादा भेद नहीं करेंगे, मारगणा नहीं बताएंगे, समास नहीं बताएंगे, आस्त्र बंध संबर निर्जरा के भेद प्रभेद नहीं बताएंगे, सीधा आत्मा बताने की प्रत्येक। तो जीतना किसे है वैसा, इंद्रियों को। इंद्रियों को जीतना यानी अपन को एक इंद्रियों को जीतने की बात जब प्रवचन सार पढ़ा तो उसमें आया कि जो व्यक्ति इंद्रियों की बस से जीते हैं भी स्वाभाविक ही दिखी। ऐसा लगा कि जो व्यक्ति इंद्रियों की बस जीवन जीते हैं भी स्वाभाविक दुखी है, और ऐसा लगा कि जिनके पुण्य प्रधान हैं ऐसे देव स्वर्गादिक में सारी अनुकूलता जिनके चारों तरफ मंडराती है, और फिर भी उन जीवों को बेचैन देखा गया है, कैसे विषय ग्रामों की तरफ भागते हुए नजर आते हैं, भृगु प्रपात की तरह जैसे पहाड़ से गिर के मर जाता है ऐसा मरण करते हैं, तब लगता है कि पांच इंद्रिय के विषय भोगने पर भी जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख इन पदार्थों में नहीं है तो इनके सेवन से सुख कैसे आएगा, ये प्रश्न उठे तो फिर ये गाथा मीठी लगेगी। अभी तो अपन को ऐसा लगता है कि भूख लगी तो भोजन कर लो शांति मिल जाएगी, प्यास लगी तो पानी पी लो। वो कह रहे हैं कि पानी भी शरीर पिएगा, भूख भोजन भी शरीर करेगा, तुझे क्या मिलेगा। ऐसा तो कभी विचारा भी नहीं कि हम अलग हैं और शरीर अलग, तो ये जीवन अंधेरे में चलता रहता। अब ये महाकरुणा सागर होते जो ये आंख खोल देते, वो कह रहे भाई साहब अपनी बेइज्जती और अपना अपमान नहीं कराओ, कैसे आप इंद्रियों के दास क्यों बनते, इंद्रियों के बल से कैसे जीते हो, यानी ये दस प्राण नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे ऐसा मान के बैठा है जी। क्यों ऐसा क्यों लगता है ऐसा कि हम मर जाएंगे। रात को अपन पढ़ेंगे समाधि मरण के माध्यम कि इस जीव को बहुत डर लगता है मरण का, और जिनवाणी कहती काय का डर, चूल्हा बदलने जैसा है, जैसे पुराने वस्त्र बदल लिए और अपन को कोई तकलीफ नहीं होती, पर ये जीव को दस प्राण और पांच इंद्रिय आदि अपने दिखते हैं, तो इसलिए इसे उसमें प्राण दिखने से, इसकी विषयों में सुख दिखने से, अपना ज्ञान अपने में नहीं दिखने से ये दिन भर हारता रहता है। भीतर विराजमान है भगवान, बाहर विराजमान है छह द्रव्यों का मेला, एक घी का सागर है एक ज्ञान का सागर, और प्रगट ज्ञान है अपना लक्षण जिससे पता चलता है कि आप जीव हो। अब गड़बड़ी कहाँ है कि जीव ज्ञान है जिससे पता चलता है कि मैं ज्ञायक हूं, उससे ज्ञान से ज्ञायक न देखकर ज्ञान से ज्ञेयों की जानकारी में लगा रहता। जिस ज्ञान से ज्ञायक प्रसिद्ध होना था उस ज्ञान से कौन प्रसिद्ध हो रहे हैं, ज्ञेय प्रसिद्ध हो रहे। और इनने टीका का नाम क्या रखा है, आत्म ख्याति, और हम कहाँ ख्याति चाहते हैं, जगत ख्याति, सारा जगत फूट उतरवाना चाहता है, चार लोगों में अपना नाम चाहता है, इस नाम के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर देते, थोड़ा सा हमारा स्थान बन जाए, फोटो आ जाए, कोई हमें पूछने लगे, भाई जिसे तुम अपना अस्तित्व बताते ये तो मट्टी की रचना, अरे मिट्टी की काया बीच में एकता चिन्मय भिन्न अति, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर पराया ज्ञान यहाँ पर की। जो इंद्रियों को जीतकर, कैसे जीतना है साहब, ज्ञान स्वभाव के द्वारा क्या मिलेगा इससे, अधिक आत्मा, इससे न्यारा है आत्मा, तो आत्मा का पाना जानना ये इंद्रियों को जीतना। हमने किसे इंद्रियों को जीतना माना था और ये भगवान हमें किसे इंद्रियों को जीतना समझाते, तो जो इंद्रियों को जीतता है ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक जानता है, किसे जानता है, आत्मा को जानता है, उससे क्या कहते हैं, ये ज्ञानी जीव। कौन ने कहा, ज्ञानियों ने। अब ये गाथा तो बहुत सरल थी, अभी गुरुदेव कह रहे थे कि ये गाथा तो बहुत सरल थी पर अमृत चंद्रदेव ने इसे बहुत कठिन कर दिया, जबकि अमृत चंद्रदेव से हर गाथा के हार्द को बताते हैं सरल करते है, परंतु अपन जैसे भोले जीव इसको समझ नहीं पा रहे थे, तो गुरुदेव ने अभी बताया था कि सूरदास बन गया बेचारा, क्या किया, उसकी आंख से उसने किसी कन्या को देखा, एक सज्जन व्यक्ति, और देखते ही से लड़की को देखते ही से विकार आ गया, तो विकार किसे आया, आंख को आया, आंख से आया कि कुछ और कारण था, और कारण था अज्ञान था, आत्मा नहीं जानता था, आनंद नहीं आता था, चिद रूप नहीं देखा था, तो उस जड़ रूप को देख करके ही निश्चया सकते हो। और वो परिणाम जो आया उसे कष्ट लगा, बहुत दुख हुआ, तो उसने कहा कि यार ऐसे विकार आएंगे तो ये विकार क्यों आए, क्योंकि मैंने आंख से देखा। तो ये दुख विकार का कारण किसे माना, आंख को। तो उसने दोनों सूजे लिए और आंखें फोड़। तो मित्र आया, उसने पूछा कि ये क्या किया, इनसे कन्या को देखा विकार आया तो इसकी जड़ ही खत्म कर, कि भैया ये तो बहुत अपराध और उसका फल तुम्हें दोनों की खबर नहीं, अपराध होता है यहां से और सजा दे दी यहां, गड़बड़ी कहां हुई। यानी जो बर्तन गिरता है तो वो पटका लगता है, ऐसी ठोकर लगती है ना, तो उसके भीतर में ऐसा उठाव आ जाता है ना, तो अब वो भीतर लगता बाहर से और सुधारते कहां से, भीतर से। और इस जीव ने क्या किया, गड़बड़ी कहां से हुई, भीतर से, अज्ञान से, और सजा किसको दे दी। ये हुआ है अनादिकाल, बहुत करुणा है। अपन जगत में धर्म भी करते थे समय सार के पढ़े बिना, तो हम क्या मान के धर्म करते थे, हमने ये नहीं खाया तो इस इंद्रिय को जीत लिया, हम कहीं जाएंगे नहीं देखेंगे नहीं तो हमने नित्य इंद्रिय को जीत लिया। ऐसा जीव इंद्रियों के विषयों को छोड़कर और अपने आप को जितेंद्रिय मानता था। तो तोरमल जी ने सातवें अध्याय जो जैनियों के लिए लिखा उसमें लिखा है कि विषय सेवन में तो अभिलाषा मूल है, विषय सामग्री छोड़ने से आश्रय बंध दूर नहीं होता। फिर कैसे होता है, विषय सामग्री का रस छूटना चाहिए, क्योंकि तुझे विषय सामग्री तो छूट गई अनंत बार पर उसकी अभिलाषा तो बनी रही। क्यों बनी रही, सुख बुद्धि रहती है तो आश्रय बंध चालू होता। बताना भाई साहब, जैसे आज हमारी अष्टमी और हम आज शक्कर नहीं खाते, मिठाई रखी, तो किसी ने कहा कि ये शक्कर की मीठा आप आज खा लो, अपन ने कहा नहीं नहीं आज नहीं खाएंगे हम कल खा लेंगे, तो आश्रय बंध आज से होगा कि कल से होगा भाई, जब कल खाएंगे तो कल होगा ना आश्रय। और वो कह रहे आचार्य देव कि आज ही से चालू हो गया तुम, तो आज हमने गलती क्या की, आज तो खाए नहीं। कि तुम्हें पदार्थ तो जड़ के परिणमन से आश्रय बंध दिखता है, और ये बताते हैं कारण कि तुम्हारे चित्त में आत्मा का आदर न होने से, अतीन्द्रिय आनंद का भोग न होने से तुम्हें विषयों में सुख दिखता है, तो तुम चाहे आज खाओ चाहे कल खाओ आश्रय बंध तो जारी रहेगा। तो बताओ ये मुफत का पाप लगता है, मुफत का पुण्य, मुफत का पाप और मुफत का धर्म। मुफत यानी सरलता से धर्म होता, अपने यहाँ कुछ बोझ नहीं लाते, वस्तु का स्वरूप है स्वीकार करोगे प्रसन्न हो। मुफत का पाप यानी जो आपके सेवन कर सकते नहीं हो और अभिलाषा छूटती नहीं, तो मुफत ही का पाप हो रहा है। और मुफत का पुण्य यानी सारे लोगों ने पूजन की, किसी ने भगवान विराजमान की, अपन अनुमोदन कर रहे, तो जो पुण्य इस परिवार ने कमाया अपन अनुमोदना करके वो पुण्य कमा सकते हैं कि नहीं, तो इसमें पुण्य करने में भी अपन ने क्या खर्च किया, गुप्त पुण्य, गुप्त पाप, गुप्त धर्म। ये गजब का स्वरूप बताया कि इंद्रियों को जीतना का अर्थ है कि इंद्रियों के दास नहीं बनना, इंद्रियों के दास नहीं बनना यानी इंद्रिय को अपना स्वरूप नहीं जानना, इंद्रियों को स्वरूप नहीं जानना यानी इससे मेरा अस्तित्व है ऐसा नहीं जानना। तो कैसे नहीं जानेंगे अपन ये मैं नहीं हूं, कि जब मैं अपने में मैं हूं दिखेगा तो अगर इसमें मैं नहीं दिखेगा। देखो विधि कुछ अटपटी से तो लगेगी पर ये वैज्ञानिक विधि है कि इंद्रियों का विषय छोड़ना है और छोड़वाते हैं अभिलाषा, और अभिलाषा छोड़ना है और बताते हैं आत्मा, आत्मा नहीं बताए तो अभिलाषा नहीं छूटती, और अभिलाषा नहीं छूटती तो सामग्री छूटने पर भी आश्रय बंध नहीं छूटता, और आश्रय बंध नहीं छूटता तो उदय आता है और चार गतियों पंच परावर्तन में परिवर्तन होता है। अभी इंद्रिया ऐसा लिखा पंडित साहब ने तीसरे चौथे अध्याय में, किसमें ये उन्होंने लिखा 80 पेज पर है कि इस जीव को मिथ्यात्व भी क्यों होता है, ऐसा पकड़ा कि मिथ्या सबसे बड़ा पाप, तो इसे मिथ्यात्व भी होता क्यों, तो उन्होंने कहा इंद्रिय ज्ञान इसमें कारण है। इंद्रिय ज्ञान से क्या होता है? इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञानियों को भी होता है, वो भी तो देखते हैं जनवाणी को, जिनेन्द्र देव को आंखों से। तो कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान में ये जीव इंद्रियों से एकत्व करता है, और ज्ञानी जीव ये निमित्त बनती तो निमित्त को निमित्त समझते, उपादान को भूलते नहीं है, निमित्त को उपादान मानते नहीं है, इसलिए मिथ्या तक ज्ञान का पाप होता है। वो सरल उदाहरण दे रहे, अमोघ वर्ष राम के राजा थे, बस 5 मिनट में, अमोघ वर्ष नाम के राजा थे, और जिनसेन स्वामी जिनने आदि पुराण लिखा उस समय की चर्चा, तो वो जंगल में रहते थे साधु पहले, तो वहां से चले आ रहे थे, और राजा रानी मंत्री ये अपनी बेटी की सगाई या कुछ कार्यक्रम में जा रहे थे, और बीच में मुनीश्वर मिली तो उतर गए, सभी लोगों ने वंदना की। तो अमोघ वर्ष राजा इतना भक्त था जैन शासन का कि वो साष्टांग लेट गया, मखमल जड़ित कोट रत्न जड़ित, और उसे बिल्कुल याद नहीं आया कि कपड़े हैं कि धूल है कि कुछ है, जंगल है और धूल में ऐसा लेट गया, क्योंकि मुनि राज मिले यानी भगवान मिले, बहुत प्रसन्नता होती, कुंद कुंद देव के नाम से होती, अमृतचंद भगवान के नाम से होती, तो साक्षात मुनि जिसके मिलते हो तो कैसा लगता होगा। साष्टांग लेट गया तो उसका जो मंत्री था उसे बहुत गुस्सा आई, वो कैसा कैसा मूर्ख राजा है, सगाई के लिए जा रहा और कोट सारा धूल में मिला लिया, ये अब जाने के लायक नहीं रहा, इसे अकल नहीं है, और किसे झोंका, नंगे धोड़ंगे जिसकी कोई व्यवस्था नहीं, जंगलों में घूमते रहते हैं, इनको भी कोई झोंका जाता। दो, और तीसरे उनकी धर्म पत्नी थी, उसने देखा मुनिराज को तो उसे ऐसा लगा कि मेरे पति होते तो कितना आनंद आता। ये आदि पुराण की चर्चा है जिनसेन स्वामी, तो उन्होंने बताया कि ये देखो तीन व्यक्ति हुई बच्चे है ना, अमोघ वर्ष राजा, मंत्री और रानी और मुनिराज। मुनिराज तो भीतर आ गई है, तुम झुको नहीं झुको कोई असर पड़ता नहीं, क्योंकि वो अपने को मुनि नहीं मानते, आत्मा मानते, इसलिए उन्हें कुछ असर नहीं पड़ता। तो अमोघ वर्ष राजा को उन्हीं मुनि को देख के विशुद्ध प्रणाम, और उन्हीं मुनिराज को देख करके मंत्री के संकलेश प्रणाम, और उन्हीं मुनिराज को देख करके रानी के विशेषक्त प्रणाम। तो बताओ मुनिराज उसमें किस जाति के प्रणामों में कारण है, विशुद्धता के कारण है कि अशुद्धता के कारण है, किसके कारण? तो ये इस तरह से निर्णय लोगे ना तो अब देह का इंद्रियों का एकत्व टूटेगा, जबरदस्त एकत्व है, और इसके लिए चाहिए गहरी अभ्यास। अभी स्वामी जी ने कहा कि भैया निरंतर सूक्ष्म अभ्यास करेगा तो ये गति छुलजेगी, अभी यहाँ से गए और अपन को एकदम से यहाँ से उठते ही अपन को कैसा लगेगा, कहाँ जाओगे भाई साहब, आप यहाँ से उठ के कहाँ जाओगे, घर जाओगे, कौन से घर? नहीं मतलब ये पूछ रहे कि हमने 31 गाथा सुनाई तो तुम्हें कुछ असर हुआ कि नहीं, तो वो पूछ रहे 31 गाथा, ये तो कह रहे तेरी इंद्रियां नहीं, तो यहाँ जहाँ देह अपनी नहीं तो अपना शरीर कहाँ है, तो फिर अपना फिर घर कहाँ है, तो यहाँ से सुनने के बाद तुम कहाँ जाओ, फिर ये घर जाएंगे, अरे तो कौन से घर जाओगे, थोड़े मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि ये गमन नहीं होगा, ये जीव नहीं जाएगा जाएगा, ये कह रहे कि तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ता, ऐसे इतना गहरा असर है विपरीतता का कि ये गाथाएं तो ऐसी ऊपर से निकल जाती, और गुरुदेव मानने वाले नहीं, उन्हें तो 45 साल तक एक ही ढंग का पीर, तुम मानो या ना भी मानो हम तो तुम्हें सुनाएंगे, क्योंकि इसके मिथ्यात के दुख बहुत कहते, इसका फल भोगते भोगते रोना पड़ेगा, बहुत भव हो गए, अनंत अनंत 24 हो गई, 1/24 का भव 1 करोड़ सागर, 1 कूड़ा कोड़ी 100 लाख करोड़ सागर, कितना मनोज 100 लाख करोड़ सागर हो गए आदिनाथ से यहाँ तक आने। जो अपन कितने बार गधा घोड़ा कुत्ता बिलैया की पर्याय में, और एक बार जन्म लेने में 9-9 महीने पेट में रहना पड़ता है, और ये कोई खेल, कि कैसे अपने कितना कष्टमयी जन्म है और ये जीव कैसा बेहोश हो रहा। यहां से कहते उठ के घर जाएंगे, अरे घर भूल जाना चाहिए। कि भाई साहब ये क्या बता रहे, आत्मा यहाँ है और इसको जीतना है इंद्रियों को, और हम तो आज तक समझ रहे थे वो घर है और ये सुख है, और ये तो सब भ्रम में पड़े। तो अभी जाओगे कि नहीं भाई साहब, अब तो नहीं जाओगे ना? तो सुनो, तो जाओगे या नहीं जाओगे? गुरुदेव कहते ये हम नहीं बताते, पर ये बताओ कि तुम जाओगे कि जानोगे। मैं इतना पढ़ाते, वो देखो घटना तो शरीर की है, परिणाम है, वो थोड़ी रुकेगा। जहां जिस शरीर को गमन करना है, राग आएगा, चित्रांतर होगा, इसका निषेध नहीं करते जनवाणी। वो ये कह रहे हैं कि ये बताओ तुम अपने को भूल के जाओगे कि अपने को साथ लेके जाओगे। इतना इतना गाथा पढ़ाने के, तो साथ लेके जाओ, तो साथ लेके जाओगे यानी शरीर भी गमन करेगा और आप भी गमन करोगे, यानी आप अपना परिणमन करोगे जानोगे, तो जानोगे कि चलोगे, जानो फिर अपने अपने जूते पहनोगे कि दूसरे के है? है? अब तो ये कह रहे कैंसिल प्रोग्राम, अब दूसरे के नहीं पहनेंगे। फिर अभी जाके महावीर भाई जाके भोजन करोगे कि उपवास करोगे है? ये क्या गजब का मंत्र है, अपन को समझता नहीं गुरुदेव क्या कहलाते थे। वो रात दिन धुन चलती थी, कैसा जीव आया होगा जो 24 घंटा एक ही काम, क्योंकि अपन 24 घंटा इसको भूले रहते हैं और 24 घंटा इसको मुख करने के लिए मिला है साथ। जिसके हाथ में समय सार आ गया, समझ लेना वो सिद्ध होके रहेगा भाई साहब, क्योंकि ये भगवान जिसे पसंद आ जाते हैं और ये जनवाणी जिसे पसंद आती है उसका भगवान ज्ञानियों ने बताया कि ज्यादा भाव नहीं रहते। जिनके चित्त में कुगुरु कुदेव रहते हैं उनके बहुत भाव हो सकते हैं, परंतु जिनके सच्चे देव सास गुरु शुद्धात्मा की स्वतंत्रता स्वावलंबन की बात रुचती है, इसके ज्यादा भाव नहीं होते। इस तरह से ये गाथा हमें अपना घर बताती, अपना परिचय बताती, सिर्फ कथनी करके फुर्सत नहीं होती, आपको प्रैक्टिकल सौंपती। थोड़ी सी शांति से बैठ के देखना कि तुम भोजन करते हो कि जानते हो, तुम आंखों से देखते हो कि ज्ञान है इसलिए जानते हो, तुम्हें सपना शरीर से अंधेरे में पता चलता है कि ज्ञान उस समय भी जागृत रहता उसे पता चलता। इस तरह से अपना जीवन धन्य करें, ऐसी मंगलवार। सहजानंदी सुधि स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।